ओम शांति। बहुत समय पहले कोई एक सन्यासी किसी गांव में आया और वो बहुत थक गया था, तो गांव का जो कुआ था, कुआ पनघट, वहां पर उसे लगा कि मैं थोड़ा लेट जाऊं। उसने एक पत्थर लिया, सिराना बनाकर वो सो गया। गांव की स्त्रियां पनिहारिन पानी भरने के लिए उस पनघट पर आने लगी। एक स्त्री ने उस सन्यासी को देखा और कहा, संसार छोड़ दिया पर तकिए का मोह अभी तक नहीं गया। और उसकी वो बात उस सन्यासी ने सुन ली। दूसरी एक पनिहारिन वहां पर आई, तब तक सन्यासी उठ गया और वो जो पत्थर था उसने फेंक दिया। दूसरी एक स्त्री वहां आई, उसने कहा, संसार छोड़ दिया पर अकड़ अब तक नहीं गई। तो वो उठकर खड़ा हो गया। एक तीसरी स्त्री वहां पर आई, उसने कहा कि तुम क्यों हमारी बातों को सुनता हो, हम तो कुछ ना कुछ कहेंगी। एक चौथी स्त्री वहां पर आई और उसने कहा, चाहे हम तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हें कुछ और कहे, तुम जो भी करो तुम हरि का गुण गाते रहो, तुम क्यों छोड़ते हो जो तुमको करना है, हम तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। चाहे हम कुछ करें या चाहे हम कुछ ना करें, संसार कुछ ना कुछ तो कहेगा ही। और यदि संसार हमें कुछ कह रहा है तो हम अपनी धारणाओं को क्यों छोड़ दें? क्योंकि जब हम धारणा नहीं करते थे तब भी कहता था, जब आज कर रहे हैं तब भी वो कहेगा। हम अपनी स्थिति को संसार के मतों से क्यों चलाए? आज सुबह की मुरली में एक वाक्य है, यदि श्रीमत पर नहीं चलोगे तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आज की मुरली से त्राही त्राही करना पड़ेगा। तो आज हम कुछ धारणाओं की चर्चा करेंगे और आज का हमारा पहला विषय है सीता और लक्ष्मण रेखा। सीता को बाबा कई बार याद करते हैं, क्यों वो शोक वाटिका में पहुंच गई? क्यों पहुंच गई? क्यों पहुंच गई? मर्यादा की लकीर पार कर गई, उसके पहले क्यों पहुंच गई? ऐसे सात कारण हैं जिस वजह से सीता अशोक से शोक में चली गई। सबसे पहला आकर्षण। सबसे पहले क्या हुआ सीता को? आकर्षण हुआ किसका? सोने के मृग का। सोने का मृग बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षक था, बहुत सारे फंक्शंस थे उसमें, बहुत सारे एप्स थे उसमें, कलरफुल था। दूसरा इच्छा, उसे पाने की इच्छा। पहले देखा और आकर्षण हुआ, और देखने के बाद वो वस्तु, वो संबंध, वो व्यक्ति, वो प्यार, वो साधन, वो जगह, वो घर चाहा, दूसरा इच्छा हुई, इसे पालू ये मिल जाए, तीसरा जिद की कि मुझे चाहिए। समझाया गया, कुछ ज्यादा फायदा नहीं। समझाया गया शायद ये झूठा है, परंतु मन जो मोहित हो गया है, चित्त जिस पर आकर्षण आ गया है, जहां वासना पैदा हो गई है, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तर्क, लॉजिक, रीजनिंग श्रीमत काम नहीं करता। जो इच्छा थी वो अब जिद बन गई, और जब इच्छा जिद बन जाती है, जुनून बन जाती है, तब व्यक्ति उसको पाने के लिए कुछ भी करता है, और फिर जितनी बाधाएं बीच में आएगी, फिर क्रोध को जन्म देगा। चौथा धोखा, आवाज किसी और की थी, पर समझा ये राम की आवाज है। आवाज रावण की थी, आवाज मरीच की थी, आवाज माया की थी, परंतु क्या समझा ये राम की है। धोखा हुआ, और जब जब व्यक्ति को धोखा होता है, जब जब व्यक्ति परख नहीं पाता, फिर पश्चाताप करता है। मनमत और परमत श्रीमत जैसे दिखाई देने लगते हैं, चौथा या पांचवा अविश्वास। लक्ष्मण से कहा जाओ जाकर देखो, क्या उसे इतना भी विश्वास नहीं कि जो सकल जगत का रक्षा करने वाला है, रक्षण करने वाला है, उस पर कोई आंच आ सकती है, वो डर सकता है? क्या उसे मदद की आवश्यकता हो सकती है? परंतु अविश्वास, पता नहीं वो हमारी मदद करेगा या न करेगा। इस जीवन में कभी कभी यह अविश्वास, वो जो निश्चय था, वो जो फेथ था, वो हिल रहा है। विदेश में स्वामी विवेकानंद ने एक जगह भाषण में बाइबल की एक बात कही थी। बोलते समय उन्होंने कोट किया था कि बाइबल में लिखा है भगवान का विश्वास, भगवान पर निश्चय, इफ ई हैव फेथ इन गॉड एंड इफ ई ऑर्डर द माउंटेन गेट अप एंड गेट प्लांटेड ऑन द सी एंड यू डोंट हैव अ स्लाइटेस्ट डाउट एन आयोटा ऑफ डाउट इन योर हार्ट इट शैल ओबे यू। यदि तुम किसी पर्वत से कहो हे पर्वत उठ और समुद्र में जागिर, परंतु कहते समय तुम्हारे हृदय में जरा भी संशय ना हो, डाउट ना हो, तो वो तुम्हारा कहना मानेगा। एक बूढ़ी माता ने यह बात सुन ली और उसने सोचा मेरे घर के पीछे एक बहुत बड़ा पर्वत है और उसके वजह से मुझे धूप कम मिलती है और उसके वजह से मेरे कपड़े नहीं सूखते और वो पर्वत खड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं ये प्रयोग करूं। और ये बाइबल की बात तो मैंने पहले ही सुन रखी थी और ये व्यक्ति ने अच्छा हो गया केवल मुझे याद दिलाई, तो मैं जरूर इसका प्रयोग करूंगी। तो वो घर जाती है, अपनी खिड़की खोलती है और देखती है इतना बड़ा पर्वत, फिर खिड़की बंद करती है और ध्यान में बैठती है और कहती है हे पर्वत इतना दूर चला जा कि तू दिखे ही ना। थोड़ी देर के बाद आंख खोलती है और खिड़की खोलती है, देखती है पर्वत तो वहीं खड़ा है और फिर कहती है मुझे पहले ही पता था ये यहां खड़ा रहेगा। जरा भी नहीं हिला, और उसमें एक बात और कही थी कि इफ यू डू नॉट हैव एन आयोटा ऑफ डाउट, किंचित मात्र भी संशय नहीं होगा, तब वो बात होगी। तो सीता को अविश्वास, उसका विश्वास, उसका निश्चय, उसका फेथ, उसकी निष्ठा हिल गई। वो ये भूल गई कौन है, क्या राम कभी ऐसा चिल्ला सकता है। अगला छठवा, परख नहीं पाई रावण है या पंडित है या ब्राह्मण है, ये परख लेना ये रावण है बहुत बड़ी बात है। आने वाले कल की मुरली में कुमारियों से मुलाकात में बाबा ने यही बात कही है, क्रीम और पाउडर सांप है, कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। व्यक्ति आकर्षित तो नहीं करता, कोई वस्तु आकर्षित तो नहीं करती, ये परख लेना ये कौन है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मणों के समाज में रावण भी श्वेत वस्त्र और बैच लगाकर घूमता है। इसलिए कभी कभी रावण, ये रावण है ये पहचानना मुश्किल हो जाता है। सीता परख नहीं पाती, ये जान ही नहीं पाती कि ये जो सामने आकर खड़ा है, ये जो परिस्थिति है, ये जो संबंध है जो मैं निभा रहा हूं, और ये जो बात है जिसको मैं सेवा कह रहा हूं, शायद यही माया है। ये जो वस्तु है जिसको मैं साथ लेकर चल रहा हूं और कह रहा हूं ये सेवा है, शायद ये सेवा है ही नहीं, कुछ और ही है, ये मन का भ्रम है, हमने सुंदर उसको नाम दे रखे हैं, परंतु वही माया है और हर एक की अपनी माया है। लास्ट लक्ष्मण रेखा पार, यहां तक भी जो हुआ ठीक था, यहां तक भी ठीक था, पर एक समय ऐसा है कि इस रेखा को पार किया कि गए। कौन सी रेखा थी वो? मर्यादा की रेखा। उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में भी ऐसी मर्यादा की कुछ रेखाएं हैं। वो कौन कौन सी रेखाएं हैं, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। इस ब्राह्मण जीवन की ऐसी 26 मर्यादाएं जो हर एक को फॉलो करना है, उसमें से एक भी कम ना हो। एक एक मर्यादा में बल है, एक एक मर्यादा में शक्ति है, एक एक नियम में पावर है, और जब जब हम मर्यादा को तोड़ेंगे तब तक शोक वाटिका का अनुभव होगा, तब तक फ्रस्ट्रेशन, तब तक डिप्रेशन, तब तक प्रायश्चित पश्चाताप आएगा। धर्मराज के दंडे कल की साकार मुरली में था, पश्चाताप की त्राही त्राही 3-4 दिन पहले वरदान में था, उसका यहां अनुभव होगा। किसी एक मर्यादा का उल्लंघन, इंटरनल टर्मोइल, एक जबरदस्त पश्चाताप, वैसा पश्चाताप होगा शायद किसी को बता ना सके। पाश्चात्य जगत के एक बहुत प्रसिद्ध फिलोसोफर फ्योडर दोस्तोयेवस्की ने कहीं कहा है, इट इज नॉट द क्राइम But the memory, the mental anguish associated with the crime, and the fear of punishment, which is worse than the crime itself. एक है पाप, एक है अपराध, परंतु उसके साथ जुड़ा है उस अपराध से प्राप्त होने वाली सजा का भय और उस अपराध से होने वाली मानसिक हलचल. यदि कानून उसे कोई सजा न भी दे, परंतु ये दो चीजें साथ साथ चलेगी, मेंटल एंग्विश एंड फियर ऑफ पनिशमेंट. आज तो छूट गए, पर बाद में नहीं छूट सकेंगे. बाबा ने सारी मुरलियों में ढेर सारी बातें बताई है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें वैसा करना है. क्या हम करें कि सारी वो बातें हमें याद रहे और हमसे कोई भूल ना हो जाए. भूल भूल हमसे तब हुई है जब हम विस्मृत हुए हैं. यदि कोई व्यक्ति इस रास्ते से चल रहा है और होश में है तो कभी नहीं गिरेगा नीचे. गड्ढा है तो बाजू से चला जाएगा, हां, पर यदि वो बेहोश है, हां, पर वो यदि मूर्छित है, हां, वो स्टुपरस डेलिरियस है, उस मूर्छा की अवस्था में वो गिर सकता है. और हम भी तब तब गिरे हैं जब जब मूर्छित हुए. तो आज हम ऐसी 26 मर्यादाएं, इंग्लिश में ABCD है, उसी के आधार से चलते हैं. ए फॉर अमृत वेला, आज सुबह की साकार मुरली. सारे दिन भर माया का बखेड़ा रहता है और अमृत वेले का वातावरण बहुत अच्छा होता है. विचार सागर मंथन उस समय किया जा सकता है, परंतु कोई बच्चे बाप को लिखते ही नहीं कि हमने ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन किया. कंप्लेंट की है बाबा ने आज. हमारा अमृत वेला सारे दिनचर्या का आधार है. जो भी जीवन की समस्याएं है, प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, ऑब्स्टैकल्स है, विघ्न है, विपरीत परिस्थितियां है, उनका उत्तर अमृत वेले में छिपा है. परंतु यदि हम अमृत वेला लेट उठ रहे, यदि हम अमृत वेला उठ रहे हैं परंतु साधारण हो रहा है, यदि अमृत वेला हम उठ रहे परंतु नींद में जा रहा है, यदि अमृत वेला उठ रहे परंतु व्यर्थ संकल्प चल रहे, यदि अमृत वेला उठ रहे परंतु अशरीर स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा है, यदि अमृत वेला उठ रहे हैं परंतु आत्मा में परमात्मा प्रेम नहीं भरा जा रहा है, तो दिनचर्या भी वैसी ही रहेगी. अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, अमृत वेला स्वयं को परमात्मा प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार आकर्षित ना करे. आत्मा की प्यास प्रेम की है. यदि उसे अमृत वेला प्रेम न दिया जाए तो सारे दिन भर वो देहधारी का प्रेम चाहेगा, मांगेगा, भीख मांगेगा. क्यों? क्योंकि आत्मा भूखी है, जन्म जन्म की प्यास है प्रेम की, और ये प्यास केवल परमात्मा ही बुझा सकता है. क्योंकि आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है. इनफाइनाइट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग विच इज फाइनाइट. जो अनंत है उसे कभी भी आदि अंत वाले संतुष्ट नहीं कर सकते. कितना भी कोई साथी बन जाए, कितना भी कोई कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, चलूंगी, परंतु आत्मा अतृप्त ही रह जाती है. और ना ही दूसरा हमें कभी जान सकता है. पति पत्नी सारी उम्र साथ रहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि मैं उसे जान गई हूं या वो मुझे जान गया है. सभी ब्राह्मणों के लिए सबसे मुख्य और सबसे पहली मर्यादा अमृत वेला. प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम् सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम्. तद्ब्रह्म निष्कलमहम् न च भाति भूत संघम। योगियों ने, तपस्वियों ने सदियों से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नच भाति भूत संगम, ये जो भूत का संघ है, ये जो असेंबलेज ऑफ बॉडी है, ये जो देह है और ये देह की सारी चेष्टाएं मैं नहीं हूं, तद ब्रह्म मैं कुछ और हूं, मैं ये देह नहीं। प्रातः स्मरण, अमृत वेले उठना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने, स्वयं को ईश्वरीय शक्तियों से भरना, यदि ये कार्य नहीं किया गया तो आत्मा भिखारी की तरह दिन भर भटकती रहेगी, मांगती रहेगी, उसे वो नहीं मिलेगा जो उसे चाहिए। बाबा ने कई बार कहा है, अमृत वेला बाबा भोले भंडारी की तरह होता है सब कुछ लुटाने के लिए, परंतु यदि हम सोए हैं तो क्या कहेंगे। हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, पिछले एक मास में ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। धर्मराज की सभा है, इंद्र सभा, बाकी इधर उधर ना देखे, सामने देखे, नहीं तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे, सबको आजू बाजू नहीं देखना है, सामने देखना है, बहुत कम। कितना भी मुरलिया सुन लो, कितना भी मुरलिया लिख लो, कितनी भी सेवाएं कर लो, यदि अमृत वेला नहीं हो रहा है, सेवाओं का वो बल भी नहीं जमा होगा। सेवा होगी पर उस सेवा में संघर्ष होगा, टकराव होगा, संस्कार टकराएंगे, मनमुटाव होगा, वैराग्य खत्म हो जाएगा। 1987 अव्यक्त मुरली है बाबा की, सेवा में ही वैराग समाप्त भी हो जाता है। केवल सेवा, केवल सेवा, और सेवाओं के जंगल में ऐसे खो गए कि योग के लिए समय ही नहीं। स्वयं को सबसे पहले, और विधि क्या है, संकल्प। यदि नहीं हो रहा है, करने की विधि क्या है, संकल्प करना। यदि कोई संकल्प करे, शक्तिशाली संकल्प, एक सूफी संत जो रोज सुबह 5 बजे उठता था, इबादत करता था खुदा की, एक दिन 6 बजे उठा, इतना रोया, इतना रोया, इतना प्रायश्चित, इतना पश्चाताप किया, सारे दिन भर में रोता रहा, ऐसे कैसे हो गया, इतने सालों से एक दिन भी मैंने तुझे देरी से याद नहीं किया और ऐसे क्यों हो गया। रोता रहा, भगवान से बात करता रहा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे आवाज आती है, उठो, तो वो देखता है किसने मुझे उठाया, क्या खुदा ने मुझे उठाया, तो एक छाया होती है, वो कहता है तुम कौन, वो कहता है मैं इबलिस, इबलिस अर्थात शैतान। तो क्या तुमने मुझे उठाया, इबलिस कहता है हां मैंने तुम्हें उठाया, क्यों, तुम तो मुझे, तुम्हारा तो काम है मानवता को सुलाना, खुदा से दूर ले जाना, तुम कैसे उठाने चले आए। तो इबलिस कहता है कल तुम को जब मैंने सुला के रखा था तब तुम कितना रोए, कितना रोए, और मैं इतना डर गया हूं, अगर तुम्हारी आवाज उस खुदा तक पहुंच जाती तो मेरा क्या होता, इसके लिए आज मैं खुद ही तुमको उठाने आया हूं। संसार में भगत होते हैं, कैसी पक्की धारणाएं होती है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। हम इतने क्यों कमजोर। एक भाई ने अनुभव सुनाया था कि वो 4:15 का अलार्म लगा के रोज रखता था, पर जैसे ही अलार्म बजता था हाथ निकलता था हृदय से और अलार्म बंद। रोज लगा के रखता था, रोज अलार्म भर के रखता और हाथ हृदय से बाहर और बंद। एक दिन उसने सोचा कुछ तो करना चाहिए, क्या करूं, तो उसके बाजू में एक दूसरी खटिया थी, सोचा उस खटिया के नीचे रख देता हूं ताकि मैं उठूंगा, फिर नीचे घुसूंगा, फिर बंद करूंगा और फिर बाहर आऊंगा, तब तक तो नींद उड़ जाएगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा, युक्ति तिकड़म कुछ तो रचना पड़ेगा, और हर एक को रचना ही चाहिए कि ये कारण है तो क्या करूं, उठ नहीं सकता, सब कुछ कर लिया, क्या करूं, किसी को बोलो कि फोन कर दे भाई, ये भी एक अच्छी विधि है, सहारा ले लो, मदद ले लो किसी का कुछ समय के लिए कि भाई तू कॉल कर देना 3:30 बजे, हर एक को ढूंढना पड़ेगा अपनी विधि। तो उस भाई ने भी ऐसा ही किया, नीचे रखा, फिर दूसरे दिन 4:15 बजे अलार्म बजा, वो एकदम से उठा और फिर याद आया कहाँ है, कहाँ इतना जोर से बज रहा है वो कर्कश आवाज, उठा फिर याद आया वो नीचे रखी है, फिर घुसा नीचे, फिर बंद किया और वहीं सो गया। पर कोशिश तो की, दिस वॉज फर्स्ट, एक अटेम्प्ट तो किया, ऐसा नहीं कि बस उस पे ही छोड़ दिया। कारण क्या है, लेट सो रहे, कारण क्या है, नींद फ्रेश नहीं हो रही है, नींद पूरी नहीं हो रही है, साउंड स्लीप नहीं है, कारण क्या है, ज्यादा लेट भोजन कर रहे, कारण क्या है, स्वयं के कारण को ढूंढना है और समाप्त करना है। यदि सब कुछ करने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो किसी से डिस्कस करो, किसी से पूछो और किसी की मदद लो, परंतु हमारा वो समय यदि नींद में जा रहा है तो दिनचर्या में गड़बड़ होगी। तो सबसे पहली मर्यादा कौन सी है, अमृत वेला। तो आज से सभी, इस भट्टी के बाद कल से सभी उठेंगे, कितने बजे उठेंगे, आज भट्टी की तो फिर संकल्प किया कल सीधा 2 बजे उठेंगे, कल 2 बजे उठे और परसों सीधा 8 बजे, रिवॉल्यूशन नहीं करना है, थोड़ा सा इवोल्यूशन करना है, धीरे धीरे क्रांति करो तो अच्छी है, परंतु क्रांति करने जाते और धड़ाम से नीचे भी गिरते, थोड़ा थोड़ा पीछे सरकना है, जैसे 4:15 है तो 5 मिनट पीछे जाओ, 4 बजे उठ रहे तो 5 मिनट पीछे जाओ, 4:15 है और 5 मिनट, 3:30 है तो और 5 मिनट पीछे, धीरे 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 धीरे, और एक फिक्स करके लंबा समय उसको वही स्टेबल रखो, नियमितता। जर्मन के फिलोसोफर इमैनुअल कैंट कभी रहा है, उसको देखकर लोग अपनी घड़ी सेट करते थे, इतना वो एक्यूरेट था। मधुबन में जस्टिस कृष्ण अय्यर आए थे, इंद्रप्रस्थ में रुके थे, जगदीश भाई जी बाजू में थे, उनकी आदत थी 2 बजे उठने की, कॉन्शियंस कीपर ऑफ इंडियन लॉ जिसको कहा गया है, 80 के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी, 100 वर्ष तक जिए, अभी अभी शरीर छोड़ा 2014 में। वो जब मधुबन में आए थे कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, वो कहते थे मुझे क्षमा कर दो क्योंकि मेरा नियम है 2 बजे उठने का, 2 बजे उठकर उन्हें किताबें लिखनी होती थी अपने लॉ के संबंध में, किसी कल्चरल प्रोग्राम में नहीं गए क्योंकि उसमें जाना मतलब लेट होना, उसकी धारणा थी, उसके नियम थे, उसकी मर्यादा, उसने अपने आप को बांध रखा था कि मुझे इतने ही बजे उठना है, फिर चाहे तुम लोगों का हो मुझे माफ करना। एक संसार का व्यक्ति अपने नियमों पर इतना अड़िग है, हम क्यों नहीं, जबकि भगवान हमसे कह रहा है पहली नियम, पहली मर्यादा अमृत वेला, कल से पक्का। दूसरा बी, बी फॉर ब्रह्मचर्य। आज सुबह की साकार मुरली, जो पावन निर्विकारी बनते हैं उन्हें कहा जाएगा बाप को फॉलो करते हैं, जो पावन निर्विकारी नहीं बनते उन्हें कहा जाएगा ये फॉलोअर नहीं है। शक्ति है, बल है, पावर है, आधार है, सारा यज्ञ पवित्रता पर खड़ा है, इस पवित्रता को निकाल दो तो यज्ञ गिर जाए, संसार में असंख्य संस्थाएं, असंख्य गुरु, इमाम, शंकराचार्य, अवतार, इनकार्नेशन, पैगंबर, पैगंबर, मैसेंजर्स, तीर्थंकर, बुद्ध होकर गए, परंतु उन्होंने जो कार्य किया और भगवान जो कार्य कर रहे उसमें एक ही अंतर है, यहां संपूर्ण पवित्रता है, 100% प्यूरिटी। आज सुबह की साकार मूर्ति जो श्रीमत पर नहीं चलते वो 100% दुर्भाग्य की शादी है। बाप दुख नहीं देते, अपनी उल्टी चलन से स्वयं को दुखदाई बनाते हैं। देवताओं में क्या बल था, पवित्रता। सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग की सीमा रेखा पवित्रता है, यहां पवित्रता है यहां नहीं है। यदि कोई ब्राह्मण बना है और उसके बाद भी देह खींचता है तो शायद आत्माभिमानी बनने का अभ्यास नहीं है। सुबह की साकार मुरली, बाप ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जो देहभान टूटता है, शायद वो इंजेक्शन हमने नहीं लगाया है इसलिए देहभान नहीं टूट रहा है और ना ही विकारों से हम प्रोटेक्टेड है। ऐसा स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन भगवान यहां आके कर रहे हैं। यदि ब्रह्मचर्य बार बार टूट रहा है और खंडित हो रहा है, यदि बार बार मन में चित्त में वासनाएं आंदोलित हो रही है तो ये धारणा भी नहीं होगी। ये परसों की साकार मुरली, ये रूहानी विद्या है, ये राज विद्या है। पढ़ाई ब्रह्मचर्य में की जाती है, यदि ब्रह्मचर्य नहीं तो धारणा भी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य बहुत सूक्ष्म धारणा है। संपूर्ण पवित्रता बहुत बड़ी बात है, परंतु उस पवित्रता के भवन का आधार स्तंभ ब्रह्मचर्य है। देह में जो ऊर्जा है वो यदि बह रही है बाहर तो शक्ति का ह्रास होगा। ऊर्जा नीचे बह जाए तो शरीरों को जन्म देती है, ऊपर बहे तो व्यक्ति में चरित्र का निर्माण होता है और पवित्रता की पावर होती है। फिर वो जो करता है वो साधारण नहीं। आज कहा ना सुबह, आत्माओं को देखो तो तीर लगेगा, शरीर को देखकर बात करोगे तो आत्मा नहीं सुनेगी। कितना यह बल हमने अपने अंदर भरा है और कहां लीक हो रहा है, व्हाट आर द लीकेजेस, व्हाट आर द ट्रिगर्स, क्या ट्रिगर है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, क्या ट्रिगर है, सोशल मीडिया, क्या ट्रिगर है, पिक्चर, फोटो, पोस्टर, क्या ट्रिगर है, पास्ट मेमोरीज, क्या ट्रिगर है, टायर्डनेस, लोनलीनेस, क्या ट्रिगर है, कौन सा वो उत्तेजक तत्व आता है और ब्रह्मचर्य को गिराकर भाग जाता है और अचानक आता है, कैसे आता है पता नहीं चलता है पर आता जरूर है। उस ट्रिगर को, उस उत्तेजक को, उस फिलिप को, उस स्टिमुलस को ढूंढना है। रिमूव ऑल द ट्रिगर्स, एक विधि है ब्रह्मचर्य की, ट्रिगर्स, आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। कुछ तो है जो देखा जा रहा है या सुना जा रहा है। लास्ट संडे की मुरली, टीचर से मुलाकात, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। जो देखते हो और जो सुनते हो बस एक बाबा ही समाया हुआ, यही स्मृति रहे कि वो करण करावनहार है, हम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें संसार की सुनेंगे और देखेंगे, उनका प्रभाव पड़ेगा और स्वप्न में आएगा और ब्रह्मचर्य को खंडन करेगा और भाग जाएगा और छोड़ जाएगा पश्चाताप। दूसरी धारणा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना हर एक ब्राह्मण आत्मा का कर्तव्य है। यदि हम यहां आते हैं और हमारे मन में विकार के, पाप के, व्यर्थ के, निगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो हम इस वायुमंडल को बिगाड़ रहे हैं। यदि हमारी यहां आकर कोई ऐसी चलन है कि जिससे हम दूषित कर रहे हैं इस वातावरण को, स्पिरिचुअल स्मोग, ऐसे पार्टिकुलेट फैला रहे हैं, ट्रैफिक ऐसा क्रिएट कर रहे हैं विचारों का कि जिस वजह से दूसरों के संकल्प ऊपर नहीं जा रहे हैं, दूसरे स्पीड नहीं जा पा रहे हैं, वो जो मेंटल ट्रैफिक हम क्रिएट कर रहे हैं बोझ है। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को क्या समझना है कि मुझे सेवा केंद्र का, सेंटर का वायुमंडल कैसे बनाना है, पावरफुल बनाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। भाषण भले न दो, स्थूल सेवा भले न करो, परंतु ऐसा कोई कार्य न करो जो बाधा बन जाए, विघ्न बन जाए, बैरियर ऑब्स्टैकल बन जाए दूसरी आत्माओं के लिए। ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई चलन यहां ना हो कि जिससे वजह से यज्ञ का नाम खराब हो। ऐसा कोई काम ना हो कि लोग हमसे कहे कि अरे तुम तो ओम शांति में जाते हो फिर भी ऐसा, फिर भी उदास दिख रहे हो। तो क्या कहेंगे? दूसरे हमारे पास आए और हम उनको बताएं ये करना चाहिए जीवन में, हम ही दुखी है, हम ही उदास है और हम दूसरों के पास जा रहे हैं कि हमें कोई मार्ग बताओ, तो क्या कहेंगे लोग? तुम वहां जाते हो और फिर भी ऐसा हाल है। सेवा केंद्र जो है वो योग आश्रम है, सेवाश्रम है ये। आश्रम में जाने के बाद जैसी पवित्रता होती है, जिस भावनाओं से लोग जाते हैं उसी भावनाओं से यहां आना है। और जो यहां रहती है वो कोई साधारण स्त्रिया नहीं है, वो संसार की नारिया नहीं है। कौन है फिर? कौन है? स्वयं शिव शक्तियां है। मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है वही है, भगवान ने जिन्हें चुना है वो है। वो चाहता तो संसार की बहुत सारी स्त्रियां थी, इंटेलेक्चुअल्स, उनको चुन सकता था, पर इनको चुना। शायद जरूर इनमें कुछ ऐसी बातें होगी जो और किसी में नहीं थी। भगवान को लगा कि मेरे कार्य के लिए ये योग्य है, इसलिए उनको उठाया और उनको चुना और अपने घर में रखा, अपना गुरु भाई बनाया। जो कार्य उसका है उसने वही कार्य उनको दिया। यदि उनके प्रति हमारे मन में निगेटिव, व्यर्थ, अपोजिट, बदला, इस तरह के कोई भी भाव चल रहे हैं तो हम इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इसलिए तीसरी मर्यादा है सी फॉर सेंटर एटमॉस्फियर, डी फॉर ड्रेस कोड, कैसा ड्रेस होना चाहिए। कलर छोड़कर कैसा होना चाहिए? कलर नहीं, दूसरी बात बताओ कैसा होना चाहिए। जिसमें क्या हो, सिंप्लिसिटी, कैसा होना चाहिए, सादगी हो, कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा, कैसा होना चाहिए, भड़काऊ ना होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए कि जिसे देखकर दूसरों को हमारी देह के प्रति आकर्षण हो। सादगी हमारा सौंदर्य है। जो जितना सिंपल है वो उतना सुंदर है। मेकअप कौन करता है? जरूर जो सुंदर नहीं होगा, जरूर जो कुरूप होगा। मेकअप की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सुंदर बनाने के लिए, अर्थात सुंदर नहीं है इसलिए तो मेकअप किया जा रहा है। संसार का मेकअप, कल तो बाबा ने कहा है, साफ है क्रीम और पाउडर को। कितना भी घिसो ये सुंदर होने वाला नहीं है। आत्मा ही पतित है तो शरीर कहां से सुंदर होगा? फिर भी इसी के सौंदर्य के पीछे खर्चा, सजाना, ये हमारी सादगी नहीं है। श्वेत हमारी सादगी। कई लोगों को डर लगता है व्हाइट से, परंतु वो जो सन्यासी होते हैं संसार के, उनके भगवे वस्त्र उनको याद दिलाते हैं हम अलग है, संसार अलग है। भीड़ में है परंतु वो भगवे वस्त्र उनको याद दिलाते रहते हैं। उसी तरह ये व्हाइट ड्रेस में भी इतनी पावर है कि वो हमको याद दिलाते रहेगा, चाहे ऑफिस में है या कहीं पर भी है, कि हम अलग है, ये अलग है। हमारी धारणाएं छिपी है इसमें। कितना कहेंगे लोग, कहते रहेंगे, कहने दो। बैच, कोई लोग छोटा सा बैच लगाती हैं ताकि दिखे भी ना और काम भी हो जाए। कोई ब्राह्मण कहे बैच तो ये बैच, और दूसरे देखे ही ना। कई सारे भाई बहनों ने अनुभव बताए हैं कि ज्ञान में आने के कितने समय तक हमने बैच नहीं लगाया, क्योंकि डर लगता था लोग क्या कहेंगे। ड्रेस कोड, एटलीस्ट जब यहां आते हैं सेवा केंद्र में तब तो व्हाइट चाहिए। बाहर चलो जो भी है, पर जब सेवा केंद्र में क्लास के लिए, भट्टी के लिए या मधुबन जाते हैं, कम से कम तो रंगीन की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। उसमें कंफ्यूजन है, उसमें रोज सोचना पड़ता है आज ये पहना, कल वो पहना, कल वो, कल वो, कल वो, कल वो। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। और कहा ये कवच है, याद दिलाएगा कि हम वो नहीं है संसार के, उनके बीच में है परंतु हम वो नहीं है, हम अलग है। स्मृति दिलाएगा ये। मेहनत थोड़ी ज्यादा है इसमें, उसमें खराब भी हो गया तो पता नहीं चलता है। इसमें दाग लग गया तुरंत दिखाई देता है। डी फॉर ड्रेस कोड, एक्सपेंसेस जो ड्रेसेस पर जा रही है उसको कम करना है, जो उसकी डिजाइन में जा रहा है उसको कम करना है। ई, एक्सचेंज ऑफ मनी, सेवा केंद्र में आकर यहां पर बिजनेस चालू करना, यहां पर पैसों की लेन देन करना, ना तो किसी को दो और ना किसी से लो। बॉन्डेज है। हां, यदि कोई ब्राह्मण है और उसको अत्यंत इमरजेंसी में आवश्यकता है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, परंतु ये मत एक्सपेक्ट करना कि वो वापस भी दे दे। शायद यही दुख का कारण बन जाए। किसी भाई ने अनुभव सुनाया था, सेंटर के एक दूसरे भाई ने 5,000 रुपए मांगे और उसको इमरजेंसी थी, उसने दे दिए, परंतु जिसने लिए वो भूल गया कि मुझे वापस भी देने हैं, और रोज सेंटर पे मिल रहे हैं। वो सामने बैठा है, जैसे ही वो सामने भाई आता था बैठकर, शिव बाबा से अब तक योग लगा रहा था, सामने आते ही 5,000 5,000 5,000 अब उससे योग लगने लगा। और वो जो व्यक्ति है सामने वाला, वो भूल गया कि मुझे देना है, बंधन हो गया। नीदर बी अ लेंडर नॉर अ बोरोवर, शेक्सपियर ने कभी लिखा है। देने वाले भी नहीं और लेने वाले भी नहीं, जितना हो सके। और वो यहां पर, डोंट कन्वर्ट दिस इंटू अ बिजनेस हब, ये आश्रम है, यहां पर वो लेन देन का बिजनेस, इसकी पवित्रता को भंग नहीं करना है। बिजनेस यहां लाकर एफ एफ फॉर फूड, लास्ट संडे की मुरली याद है ना, बिस्किट और आइसक्रीम, कुमारियों से मुलाकात, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मशीन मेड है, मशीन मेड नहीं क्या करना चाहिए मशीन अपने आप चलती है क्या, कि कोई चलाता है? सात्विक आहार अर्थात उसमें तीन बातें होनी चाहिए। वो आहार जो आलस प्रमाद निद्रा को न लाए, मॉडरेशन इन डाइट, मित आहार अर्थात दैट डजंट इंड्यूस लेजीनेस, स्लॉथ, केयरलेसनेस, ऐसा आहार कि वो खाते ही नींद आ जाए, आलस आ जाए, वो सात्विक आहार नहीं। दूसरा वो आहार जिससे एक्साइटमेंट उत्पन्न होती है, वो सात्विक आहार नहीं। उत्तेजक आहार, बहुत तीखा, बहुत मसाले वाला, बहुत मिर्च वाला, बहुत तेल वाला, बहुत स्वादिष्ट। जगदीश भाई कहा करते थे, थोड़ा सा ही डाला है हमने मसाला, पर ये थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लग जाता है। तो जो आहार लिया जा रहा है वो कैसा हो, ऐसा ना हो कि जिससे खाते ही नींद, और इतना ना हो, बहुत। आयुर्वेद तो कहता है कि इतना खाओ कि जब लगे अब आधा पेट भर गया बस छोड़ो, परंतु व्यक्ति इतना खाता है जिससे आधा पेट खुद का भरता है, आधा डॉक्टर का, बहुत रहम दिल है। थेमस थॉमस जेफरसन नाम का एक व्यक्ति है, फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका लॉन्ग बैक, उसने एक जगह लिखा है कि हम कभी भी कम खाने के लिए पश्चाताप नहीं करते। कि कोई करता है, कल मैंने नाश्ता कम क्यों कर लिया, ज्यादा करना चाहिए था। कोई करता है ऐसा, कल रात में मैंने भोजन ज्यादा क्यों नहीं किया, कम करना चाहिए था। किस लिए पश्चाताप करता है हमेशा, ज्यादा खाने के लिए। कम खाने के लिए कोई करता है कि आज तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खा लेना चाहिए था, कभी नहीं करता है। व्यक्ति जितना खा रहा है उतना शायद उसको जरूरत ही नहीं है। ये प्रश्न स्वयं से पूछना है कि मैं खाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए खा रहा हूं, छोटा सा प्रश्न है, अनादिकाल से चालू है, पर अभी भी उतना ही प्रासंगिक है। फूड, तीसरा है फूड, वो अन्न जो स्वास्थ्यवर्धक हो, इनविगोरेटिंग, जिससे लाइटनेस आए, शक्ति आए, पोषण से भरा हो। ये तीन अर्थात सात्विक आहार। फिर वो खुद सोचो आप, जो हम ले रहे हैं वो सात्विक है या राजसिक है, बहुत उसमें तीखापन है, बहुत उसमें हर चीज जो बन रही है हर चीज को तेल से गुजारो और उसको टेस्टी बनाओ। चावल है छोक लगाओ, दाल है छोक लगाओ, हर चीज को तेल से गुजारो, हर चीज में नया नया कुछ कुछ डालो। स्वयं को पूछना है, एक तो फूड के विषय में ये बात, और दूसरा एक प्रश्न है, यहां पर ऐसी कितनी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है? बहुत सारी है। भगवान को रोज भोग लगाना। कितने ऐसे कुमार हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या भाई? एक ही। कितने ऐसे भाई हैं जो रोज भोग लगाते हैं? कम है। 24 घंटे में एक बार जो भोजन बनाते हैं वो भोग जरूर लगाएंगे, और जो भोजन नहीं बनाते वो भी भोजन से पहले उस भोजन को दृष्टि देंगे और अर्पण करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति। हे अर्जुन, यदि कोई मुझे पत्र पुष्प और फल दे दे, अनन्य भाव से दे, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। मुझे तुम्हारे 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। बाप कहां आते हैं? साकार महावाक्य है, बाप अमीरों की महफिल में नहीं आते जहां 56 प्रकार के भोग है, बाप गरीबों की महफिल में आते हैं जहां सूखी रोटी है। आज भी कहा, जो गरीब होंगे वो साहूकार बनेंगे और जो साहूकार है वो गरीब बनेंगे। सुबह था ना, सभी ने सुनी आज की मुरली? किसने नहीं सुनी आज की मुरली? ऐसा ना हो कि शाम हो गई और हमने आज की मुरली नहीं सुनी। इतना लेट नहीं कर देना, कल दूसरी आ जाएगी, आज का तो गया। द लास्ट शैल बी द फर्स्ट एंड द फर्स्ट शैल बी द लास्ट, बाइबल में मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स नंबर 16, जीसस क्राइस्ट कहता है कि जो यहां प्रथम है वो मेरे राज्य में अंतिम होंगे, और जो यहां अंतिम है वो मेरे राज्य में प्रथम होंगे। आश्चर्यकारक वाक्य है बाइबल में कहीं कहीं, अर्थात जो यहां बहुत आगे आगे करते हैं वो वहां सबसे पीछे होंगे, और जो यहां अत्यंत नम्र है, जो अत्यंत गरीब है, वो सबसे आगे वहां होंगे। बाप गरीब निवास है, तो भोजन बहुत प्रेम से बनाया हुआ हो, शुद्धि से बनाया हुआ हो, किचन साफ सुथरा हो, भोजन बनाते समय आवाज कम से कम हो। एक है बहुत आवाज कर करके भोजन बनाना, एक है योगयुक्त होकर जो भी चीजें डाली जा रही है एक एक को सकाश दृष्टि देते हुए याद में, और ये भाव ना हो कि जो ये भोजन खाए कहे कि बहुत स्वादिष्ट है, इस कामना से, मनुष्य की कामना, मनुष्य की प्रेज प्राप्त करने के भाव से कि ये भोजन मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि ये जो आए कहे कि वाह बहुत अच्छा है, और उन्होंने अगर नहीं कहा तो दुखी। तो भोजन शुद्धि से, श्रेष्ठ संकल्प के साथ, मौन से, कम आवाज भोग लगाना, और खाते समय भी योगयुक्त होकर। लास्ट संडे की मुरली मौज, संगम युग मौजों के नजारे का युग है, खाते हो तो बाप के साथ खाते हो। और ब्रह्मा भोजन का अपना बहुत महत्व है, दुख भंजक भोजन है। 1988 अव्यक्तवाणी, दुख भंजक, दुख का नाश करने वाला है। और ऐसा कहा जाता है यदि मनुष्य के हृदय तक पहुंचना है तो मार्ग उसके पेट से निकलता है। किसी को खुश करना है तो कैसे खुश करेंगे उसको? हृदय तक पहुंचना है, मार्ग इधर से, नीचे से, ऊपर से नहीं, इधर से, ऐसा कहा गया है। उसके पेट से मार्ग निकलता है उसके हृदय तक। आत्माओं को खुश करना है तो डी एफ, उसके बाद जी, जी अर्थात गिव हैप्पीनेस, गिव गुड विशेस, गिव ब्लेसिंग, खुशी देना, सुख देना, शुभ भावना देना और दुआएं देना। इस ब्राह्मण परिवार में हर एक के प्रति हमारे मन में शुभ भावना हो, ये नहीं है अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, हम शुभ चिंतक हैं। आज कहा ना स्लोगन में, अपनी और उनकी सबकी चिंता मिटाने वाले, सबको देना जी। उसके बाद में एच फॉर होली कंपनी अर्थात सत्संग। एक है कमरे में बैठकर मुरली सुनना, घर में बैठकर, ऑफिस में बैठकर मुरली सुनना या ऑडियो सुन लेना, एक है यहां आना। यहां आने का एक फायदा है सत्संग, यहां आने का फायदा है इस ऑर्बिट में आप एंट्री करते हो, एक ऑरा है यहां पर, एक वाइब्रेशन है यहां पर, एक प्रकंपन है यहां पर, दैवी प्रकंपन, शक्तिशाली वातावरण है। ये वो स्थान है जहां पर कोई विकार विकर्म नहीं होता कभी, संसार के स्थान है वहां कभी ना कभी विकर्म हुआ है। यहां पर लंबे समय से मुरलियां सुनाई जा रही है, भगवान के महावाक्य सुनाए जा रहे हैं, तपस्वी बहने हैं, तो ऐसे वातावरण में आना अर्थात स्वयं को चार्ज करना, मन का मौसम बदल जाता है यहां आकर। क्या होता है? मन का मौसम जो मुरझाया सा हो जाता है कभी कभी, यदि हृदय का मौसम बदलना है तो यहां आ जाओ। सत्संग सबसे बड़ा संग तो उसका है, दूसरा संग है ब्राह्मण परिवार का संग। यदि उदास हो जाओ, बाबा कहते हैं ना बीच बीच में मधुबन चले आओ, मधुबन में रिकवरी पीरियड बहुत फास्ट है, संसार में कम है, और यहां पर सेवा केंद्र आधार है। एच के बाद आए इनकल्केशन ऑफ डिविनिटी अर्थात दिव्य गुण और शक्तियों की धारणा करना, स्वयं की चेकिंग करने रहना है कि मेरे में कौन सा दिव्य गुण की कमी है। पवित्रता, शांति, आज कहा ना वरदान में शांति, स्वयं को शांति कुंड बनाओ, स्वयं शांत स्वरूप बनो और दूसरों को शांत, दूसरे पर शांति की शक्ति फैलाओ। कितना हमने किया है, गुणों से और शक्तियों से स्वयं को भरना। संगम युग इज अ पीरियड फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट। कितना मैंने स्वयं को एम्पावर किया है, एकदम हलचल वाली परिस्थिति आ जाए, यदि मुझे वहां रखा जाए तो मैं शांत रहूंगा, स्टेबल रहूंगा या हलचल में आ जाऊंगा। विकारी वातावरण में रख दिया जाए तो ब्रह्मचर्य ऐसे ही टूट जाएगा, इतना हल्का फुल्का ब्रह्मचर्य है कि अड़ी ग्रह हो गए खड़े। आए जे, जे फॉर जर्नी टू मधुबन, मधुबन की यात्रा, कैसे जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, विधि पूर्वक जा रहे हैं या विधि तोड़कर जा रहे हैं, और वहां जाने के बाद क्या कर रहे हैं, मधुबन निवासियों के अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं, वहां जाने के बाद तपस्या कर रहे हैं कि आउटसाइड ऑफ शांतिवन शॉपिंग चालू है दिन भर, वहां जाने के बाद तपस्या कर रहे हैं या परचिंतन परदर्शन कर रहे हैं, वहां जाने के बाद तपस्या कर रहे हैं या भोजन में बुद्धि लगी हुई है, वहां जाने के बाद तपस्या कर रहे हैं या इससे मिलू इससे मिलू उससे मिलू इससे मिलू और मिलने में ही समय जा रहा है, वहां जाने के बाद तपस्या करने गए थे, भगवान से मिलन मनाने गए थे और वहां जाकर मनुष्यों से मिलन मनाते रहे और खाली हाथ लौट कर आ गए, और यहां बैठकर फिर अनुभव सुनाते कि बाबा से बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कोई अनुभव नहीं है, सब झूठ। अनुभव इतना सस्ता है कि बस जाने से मिल जाए। अनुभव उनको होता है जो तपस्वी है, अनुभव उनको होता है जो दीवाने हैं। आज सुबह की साकार मुरली, भागेंगे वो जो योग युक्त है। मधुबन के लिए कहा है, एक समय होगा कि सारे इधर आ जाएंगे, आश्रय होगा, परंतु भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे। ऐसे योग युक्त होकर जो भागते हैं, बाबा ने एक मुरली में कहा था एक दो मास पहले,
जैसे वो स्त्री जिसका पति खो गया था और अचानक आ गया, बावरी सी गलियों से भागती है। तुमको भी बाबा के लिए ऐसे भाग के आना चाहिए, बावरा सा। वैसे नहीं आ रहे, ऐसे ही आके बैठ रहे तो उस डायमंड हॉल में कुछ नहीं होने वाला। अनुभव बहुत बड़ी चीज है। त्याग चाहिए, वैराग चाहिए। वहां जाने के बाद मौन चाहिए। वहां जाने के बाद भी डिजिटल वर्ल्ड में खोए हुए हैं तो क्या अनुभव हो जाएगा? अनुभव इज एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो मधुबन में जाने के लिए पहले स्वयं को तैयार करना है कि वहां मैं क्या करूंगा, और वहां जाने के बाद में एकांत ढूंढना है, तपस्या को लक्ष्य रखना है। और ये जो बाकी की बातें हैं वहां पर सारा मार्केट, उनसे स्वयं को दूर रखना है। और वहां जा रहे तपस्या के लिए, किसी के अवगुणों का वर्णन करने के लिए, गिनाने के लिए नहीं कि ये भी ऐसा करते वो भी ऐसा करते। व्हाट इज दैट टू यू? तुमको क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो। यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, ये लोग खाना खाते समय बात करते, ये करते वो करते, खेलते, तुम अपने काम से काम रखो। डोंट इंटरफियर। जो चीज के लिए गए हैं वही करना है। जर्नी टू मधुबन, जे, जे के बाद के फॉर कीपिंग चार्ट। कीपिंग चार्ट कई सारी मुरलियों में आता है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो, और ये नियम है, ये मर्यादा है। यदि चार्ट नहीं लिखना चाहते तो कम से कम डायरी तो लिखो। डायरी में अपनी दिनचर्या लिखना, ऊपर बाबा से शब्द से चालू करना, आज अमृत वेला इतने बजे उठे, फिर यहां गए, फिर वहां गए, जो कुछ दिन भर में हुआ वो सारा लिख देना, बस लास्ट में गुड नाइट। फिर धीरे धीरे, दिस इज नोन एज डायरी राइटिंग। चार्ट लिखते लिखते थक जाते, डायरी तो लिखो, उससे बहुत फायदे हैं। एक हफ्ता पहले क्या किया था वो उससे पता चल जाएगा। और संडे को उसको रिव्यू करो, मंडे से सैटरडे तक डायरी लिखना, संडे को उसको देखना। आज इसने मुझे ऐसा कहा, मुझे रोना आ गया, वो भी लिख दो। आज उसने मुझे ऐसा कहा, बहुत बुरा लगा, आज का दिन ही बुरा था, सारा ही लिख दिया है। और जब दो तीन दिन के बाद उसी चीज को देखोगे तो फिर लगेगा, अरे इतनी छोटी सी बात थी और मुझे बुरा लग गया, ये भी कोई बात थी, कुछ इसमें दम ही नहीं है। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो केवल समय भरता है। सारा ज्ञान योग लगा लो, हिलते नहीं, हटते नहीं। टाइम इज द अल्टीमेट एंड द लास्ट हीलर। तीन दिन के बाद उसी चीज को देखो तो जिस दिन दुख हुआ था आज देखो तो वो दुख ही है। पर वो पता कैसे चला? क्योंकि हमने लिखा था, राइटिंग। रोज एक डायरी बनाओ, और यदि डर है कि कोई दूसरा डायरी पढ़ ले तो क्या करेंगे? कोड वर्ड्स, किसी का नाम नहीं लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, आ लिखो, बा लिखो, का लिखो। यदि डर है कि कोई दूसरा पढ़ ले तो कीपिंग चार्ट, और फिर धीरे धीरे उसी डायरी में चार्ट की पॉइंट इंक्लूड करते रहो। आज अमृत वेला किया पर कुछ पावरफुल नहीं था, नींद था, उसमें नींद थी, वो भी लिख दो। के बाद एल, एल अर्थात लव फॉर ओनली एंड वन बाबा एंड यज्ञ। एक और एक केवल बाप से प्यार। ये जो देहधारी है, ये जो समुदाय है, ये जो सारे लोग हैं, इनके प्यार ने क्या दिया? क्या दिया? दुख। और क्या दिया? हाँ, अशांति। और क्या दिया? मनुष्य से प्यार कर क्या मिला? टकराव। और क्या मिला? तनाव। और क्या मिला? धोखा। और क्या मिला? नफरत। प्यार करके नफरत, ऐसा भी हुआ है, जिससे बहुत प्यार किया था सबसे बड़ा दुश्मन ही वो बन गया। और क्या मिला मनुष्य से प्यार करके? अपेक्षाएं भंग हुई, जिससे प्यार किया उससे अपेक्षाएं बढ़ जाती है। इधर से एक मैसेज भेजा, उधर से कोई मैसेज नहीं आया। रेड बट नॉट लिप रिप्लाइड, दुख बढ़ गया। और हम इंतजार ही कर रहे हैं, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। इंतजार ही कर रहा है अब आ जाओ ऑनलाइन ऑनलाइन, और वो आता ही नहीं ऑनलाइन, और आ भी गया तो रिप्लाई नहीं। तो एक्सपेक्टेशंस और दुख, और क्या मिला मनुष्य से प्यार करके? परेशानी क्यों? टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, फोन टाइम, संकल्प, पैसे, पैसे गए ना, टाइम गया, पैसे गए, एनर्जी गए, एनर्जी गई, और दुख तो बाद में मिला ही। इतना जिसके लिए प्यार किया और इतना समय दिया, संकल्प दिया, सब कुछ किया, और धड़ाम से एक दिन छोड़ के चला जाए। परमात्मा प्रेम, ये आप सबके लिए होमवर्क है। मनुष्यों का प्यार और भगवान के प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने अभी नहीं बताना है, लिखना है आपको अपना, कि परमात्मा से प्यार और ईश्वर मनुष्य से प्यार, अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, इससे हमने प्यार किया, इसको इतना अफेक्शन दिया और क्या मिला? साक्षी होकर देखना, खुद को डांटना नहीं, ज्यादा देखना बस, ये मिला और ये भगवान से प्यार। बाबा कभी नाराज होता है क्या? जा मैं अभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, बहुत कर लिया, इनफ इज इनफ, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, हो ही पतित, जाओ। कभी ऐसा सुना? आज बाप पतितों की सभा में आए हैं। कभी कहा जिन्होंने लास्ट टाइम का होमवर्क नहीं किया आउट, ऐसा कहा सुनते हुए कि जिन्होंने 15 दिन पहले जो होमवर्क दिया था और जो नहीं किया है आउट ऑफ द क्लासरूम, ऐसा कभी नहीं कहा उसने। तो अगला नेक्स्ट एन, एन अर्थात नो, एम, एम अर्थात मुरली क्लास, एम अर्थात मुरली, एम अर्थात मुरली का चिंतन मनन अध्ययन। केवल क्लासरूम में आ गए, मुरली सुन ली और चले गए, यह है पुरानी चाल। साकार महावाक्य है, वो जो मुरली है उसका अध्ययन कितना किया, उसकी स्टडी करनी होती है, स्वाध्याय है, श्रवण मनन निनिध्यासन। शास्त्रों में 3 चीजें लिखी है, श्रवण सुनना, मनन करना उसका जो सुना, और फिर उसको प्रैक्टिकल में लाना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। खाली सुन लिया इज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। एम फॉर मुरली चिंतन, और मुरली क्लास, और वो यहां आके, उधर बैठकर नहीं, इस वातावरण में आकर। और यदि इररेगुलर है तो सबसे पहले उसको रेगुलराइज करो। यहां हाजिरी लगनी चाहिए भगवान के दरबार में, बल आएगा। एक महीना भी कोई रेगुलर करे तो उसकी वो स्थिति नहीं रहेगी जो आज है, कुछ ना कुछ हो जाएगा बीच में परिवर्तन। एम एन, एन फॉर बिग नो, नो टू क्या क्या, बहुत बड़ी लिस्ट है। नो टू सिनेमा, फिल्म्स, मूवीज, ट्रेलर्स, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है, देखने का भी प्रभाव पड़ता है, क्या रखा है उसमें। सारी फिल्में और सारा संसार काम वासना के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसके अतिरिक्त तो उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ कोई बहुत अच्छा सीरियल है और बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, परंतु उनका लक्ष्य क्या है? वो जो एक्टर्स है उनका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है? क्या वो आत्मा को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं? नहीं। नो टू करप्शन, नो टू गैम्बलिंग। ये तो संसार की बहुत सारी बातें हैं, परंतु सूक्ष्म में ब्राह्मण परिवार में भी कहां कहां आ जाती है लालच, कोई ना कोई लालच, और वो करने पर मजबूर करता है। नो ड्रग्स एडिक्शंस, नो तो स्लीपिंग पिल्स डॉक्टर ने दी नहीं है, परंतु कुछ दवाइयां हम खुद ही ले रहे हैं अपने मर्जी से। डॉक्टर ने नहीं दी, हम खुद ही ले रहे हैं, और ये जस्टिफाई करते कि हमको बहुत जरूरत है ये सारी चीजों की, और ये हमने नहीं लिया तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास एक पेशेंट था, कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में गया, पैर में चोट लग गई थी, तो वो डॉक्टर ने उसको दर्द की दवाई दी, 5 दिन की दी थी, वो 3 साल तक लेता रहा, और बाद में किडनी फेलियर हो गई और डायलिसिस चालू हुआ। अच्छा लगता था खाने से, थोड़ी सी नींद आ जाती थी और खाता रहा। सेल्फ मेडिकेशन, लिस्ट इसकी लंबी है, इसको हम छोड़ते हैं। एन, एन के बाद ओ, ओ अर्थात ऑब्जर्विंग ऑल प्रिंसिपल्स और श्रीमत, श्रीमत फॉलो करना, जो जो मर्यादाएं दी हुई है ये सारी, उन सबको फॉलो करना एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। ऑब्जर्विंग श्रीमत और ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्राह्मिन लाइफ। ओ पी, पी अर्थात प्रिंटिंग लिटरेचर, सेवा केंद्र की जो प्रशासिका बहन, प्रभारी बहन है, इंचार्ज या टीचर बहन, उसको बिना पूछे अपनी प्रिंटिंग्स करना, पर्चियां छापना, पाम्पलेट छापना या बुक्स छापना या बहुत सारे बैनर अपने हिसाब से, ये सेंटर की मर्यादा नहीं है। जो भी पब्लिश करना है, जो भी प्रिंट करना है, वो पूछकर। क्यू, क्यू अर्थात क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, ये मेडिकल में या कंपनियों में बहुत होता है कि जो भी हम करें उसमें स्टैंडर्ड हो, चाहे सेवा हो या कोई काम करे, कोई भी अच्छी से कुछ भी करे, स्टैंडर्ड उसमें क्वालिटीज हो। ऐसा ही नहीं बस काम चलाऊ कर दिया, जो भी करे दैट शुड बी द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, फिर पैसा लगे चलेगा, परंतु काम अच्छा होना चाहिए, ऊपर ऊपर का नहीं, दिखावा वाला नहीं। क्यू, क्यू के बाद आर, आर अर्थात रिलेशनशिप, इस ब्राह्मण परिवार के अंदर एक ही संबंध है, भाई और बहन। आज की मुरली, शिव बाबा ना मेल है ना फीमेल, आत्मा ना मेल है ना फीमेल, आत्मा निर्लिंग है, सेक्सलेस। हाँ, यदि पर साकार में है और ब्रह्मा की संतान है तो सभी कौन है आपस में, भाई बहन। किसी को विशेष बहन नहीं बना देना, किसी को विशेष भाई नहीं बना देना, किसी को माँ, किसी को बाप, किसी को चाचा, किसी को काका, किसी को मामा। संसार के संबंध यहां लाए तो मोह होगा, आकर्षण होगा, सारे संबंधों में डिटैचमेंट हो, डिटैच्ड रिलेशनशिप्स, और सारे सेवा के संबंधों, सारे संबंधों के बीच में ज्ञान कटार हो। जैसे ही वो ज्ञान की तलवार निकल जाएगी, लगाव, झुकाव, आकर्षण, एक नया मार्ग चालू होगा, और व्यक्ति गिर जाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा। तथा कथित स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप, कोट अनकोट, वो जो भी वो कहता था संसार भर में, सन्यासिनी और सन्यासी साथ रहे हैं, संसार भर में फादर्स और नंस, संसार भर में जितने तपस्वी आश्रम और सन्यासी रहे हैं, सबका पतन जो हुआ है इसी कारण से हुआ है, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप से चालू हुआ, अरेंडेड इनटू सेंशुअल फ्रेंडशिप, चालू यहां से हुआ था, गिरे यहां पर। भाग भाग कर शादियां जिन्होंने की, क्या उनका हाल हुआ वो खुद ही जानते हैं। क्षणिक आवेश, ट्रांजिएंट पैशन, ट्रांजिएंट जुनून, सडन अर्ज एंड रिजल्टेंट रिपेंटेंस। इसलिए सारे संबंधों को क्या कर देना है, डिटैच्ड। बेस्ट, ही वॉक्स द मोस्ट हु वॉक्स अलोन, इट्स अ फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की यात्रा है अकेले की ओर। सबको मिलकर पकड़कर नहीं जा सकते हैं। बाइबल में लिखा है द पाथ इज नैरो एंड स्ट्रेट, प्रेम गली अति सांकरी जहां दो ना समाए। कबीर कहता है दो नहीं जा सकते इसमें, अकेले को जाना पड़ेगा। द पाथ इज नैरो एंड स्ट्रेट, जिगजैगिंग नहीं करना है, इधर उधर गलियों में नहीं भटक जाना है, नैरो है, किसी का हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकते, अकेले की यात्रा है, अकेले को ही जाना पड़ेगा, अकेला ही हो तुम, एक अकेला चालो रे। इफ दे आंसर नॉट टू थाई कॉल वॉक अलोन, इफ दे डेजर्ट यू व्हाइल क्रॉसिंग द विल्डरनेस ओपन द हार्ट एंड स्पीक आउट अलोन, वॉक अलोन वॉक अलोन वॉक अलोन, अकेले को ही जाना है। सोचा ये मेरा साथी बन जाए, माया। सोचो ये मेरे बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, सोचो इसको गुरु ही बना लूं, गए, व्यक्ति में ही फंस जाएंगे। अकेले है और अकेले जाना एक परमात्मा के अतिरिक्त। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है आई वॉन्ट सच पीपल, ऐसे लोग मुझे चाहिए 100 कि जो खड़े रह जाए और कहे कि एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई नहीं। 100 सच कॉमा एंड द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड। 100 ऐसे जो कहे कि एक उसके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। संबंधों से वैराग निभा रहे, तोड़ निभा रहे, प्यार दे रहे, परंतु किसी में फंस नहीं रहे, किसी से कोई लेना देना नहीं, आई एम डिटैच्ड। अभी आए थोड़ी देर सेवा की, जैसे होटल में गए, होटल के कमरे में थे, जब तक थे कमरा ठीक था, काम पूरा हुआ हम निकल गए ट्रेन के डिब्बे में। कई लोग आए, जिसका जिसका स्टेशन आते गया उतरते गया, हमारा स्टेशन आ गया हम उतर गए। यदि मैं किसी से आकर्षित हो जाऊं और पकड़ के बैठ जाऊं किसी को, तो ट्रेन छूटने के बाद मुझे दर्द होगा कि वो मुझे चाहिए। जीवन भी ऐसी ही ट्रेन है, आ रहे लोग और जा रहे, आने दो जाने दो, पकड़ के नहीं बैठ जाना किसी को। डिटैच्ड रिलेशन, आर एस, एस फॉर साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, मौन और एकांत। आवाज 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 आवाज, सुबह से लेकर रात तक शोरगुल, अध्यात्म बिना मौन और एकांत के कभी अपनी चरम अवस्था तक हमें नहीं पहुंचा सकता। मौन चाहिए, एकांत चाहिए, कम से कम मृत्युवेले के बाद का समय मौन, कम से कम ऑफिस से आने के बाद शाम का समय मौन, डिजिटल साइलेंस, डिजिटल डिटॉक्स, कम से कम सोने के आधा घंटा पहले तो भी ये बंद हो जाए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एनर्जी खींच लेता है शब्द, इस आत्मा को एकांत चाहिए, मौन चाहिए, भीड़ के प्रभाव से मुक्ति चाहिए। एस फॉर साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, एस एस के बाद टी, एस टी, टी फॉर, टी फॉर, हम मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, वो वर्च्यूज जो है ना वो नहीं सुनाना है। हाँ, वर्च्यूज नहीं सुनाना, वर्च्यूज की लिस्ट अलग है, सारे गुण है, पेशेंस, ये वो ट्रैवलिंग टू अदर सेंटर, दूसरे, ये हम नियम बता रहे हैं सेवा केंद्र के, एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र में जब हम जा रहे हैं तो यहां का लेटर चाहिए, परमिशन चाहिए, नियम मर्यादाएं चाहिए, और वहां जाने के बाद में भी सारी नियम मर्यादाएं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई ऐसा उपद्रव करें कि उनके लिए मुश्किल हो जाए, और जिस लक्ष्य के लिए जा रहे वही लक्ष्य से जाना है। किसी एक सेवा केंद्र ने अनुभव सुनाया था कि एक दूसरा रिट्रीट सेंटर था बड़ा, दो तीन भाई आ गए वहां पर भट्टी करने के लिए 3 दिन। तो शाम को पहुंचे, 1 घंटा बाबा के कमरे में योग किया, फिर दूसरे दिन साइट सीइंग का प्रोग्राम सारे दिन भर चला, फिर पर दूसरे दिन भी साइट सीइंग का चला, फिर 1 घंटा बाबा के कमरे में बैठ के आ गए और सेंटर पर जाकर अनुभव सुनाया, हमने 3 दिन भट्टी करके आए और सारा दिन साइट सीइंग चालू था। उसके बाद यू अर्थात यूटिलाइजिंग टाइम एंड अदर रिसोर्सेस ऑफ यज्ञ इन अ वर्थवाइल मैनर। यज्ञ समय को सफल करना है और यज्ञ की जो साधन वस्तुएं है उनको भी सफल करना है, उनका भी इकोनॉमी से चलना है। ऐसा नहीं कि मधुबन में जा रहे हैं तो वहां भोजन इतना सारा दिखा, इतना थाली में डाल दिया, थोड़ा सा खाया और फेंक दिया। ब्रह्मा भोजन मधुबन में जाके देखो आप, नीचे शांतिवन में कितना भोजन वेस्ट। अगर पता है ये नई वस्तु है, नया आइटम है जो हमने कभी खाया नहीं है, इतना सा लो। ऐसा नहीं कि सब लोग इतना ले रहे, पता नहीं कितना होगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा, और पूरा थाली भर दी और बाद में पता चला ये हमको पसंद ही नहीं, मैं इसको खा नहीं सकता और फेंक दिया, कौन देखता है, बोझ है। जितना चाहिए कम ही लेना पहली बात तो, हाँ फिर भले और एक्स्ट्रा ले लो, पर पहले इतना ले लिया जब हमको पता है हम नहीं खाने वाले हैं। वेस्ट करना रिसोर्सेस, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, अपने घर को भी कल की मुरली, अव्यक्तवाणी। एक है सेवा केंद्र, एक है मधुबन और एक है वो परम धाम, वो असली घर है, ये भी तुम्हारा घर है। अपने सेवा केंद्र को बाबा ने कहा है वहां पे सेवा केंद्र समझो, घर नहीं समझो। जहां हम लौकिक में रहते हैं, इस पॉइंट को इस रीति से भी लिया जा सकता है कि उसको भी सेंटर समझो, ये नहीं समझो मैं अपने लौकिक घर में हूं, यही समझो कि ये सेवा केंद्र है, यही समझो ये जो किचन है ये सेवा केंद्र का किचन है, यही समझो ये जो पानी है ये सेवा केंद्र का पानी है। सेवा केंद्र अर्थात मधुबन, मिनी मधुबन, बाबा का यज्ञ तीर्थ स्थान। उस घर को इतना नहीं सजा दो कि लोग आके कहे ये 5-स्टार होटल जैसा है, इतनी उसमें सादगी हो कि लोग कहे ये तो आश्रम जैसा दिखता है। घर ऐसा ना हो कि जिसमें इतनी चमक दमक, इतना सजा के रखा है कि आश्रम के कोई चिन्ह नहीं है वहां पर। सादगी, तपस्वी, हम योगी आत्माएं हैं, हमें वो सब दिखावटी चीजें नहीं चाहिए संसार की, उसका कोई अंत ही नहीं है। सजाए जा रहे हैं, पैसा जा रहा है, पैसे की भी बात नहीं है, पर वहां का वातावरण, जो सेवा केंद्र यहां जैसे आप बैठे हो, यहां से घर जाने के बाद ऐसा लगे कि कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, एक कमरे से दूसरे कमरे में गए, जो जो ऐसी वस्तु है भड़काऊ उसको हटा दो वहां से, सिंपल, उसी में आनंद है, उसी में सुख है। जो चित्र लगाए रखे है वो चित्र देखने के बाद स्मरण हो योगी जीवन का, पवित्रता का, देवताओं का। सतयुग के सिनसिनरिया लगाओ अगर लगाना है, संसार के चित्र लगा के क्या करना है, संसार का चीप एंटरटेनमेंट, चीप पिक्चर्स एंड पोस्टर्स, दिस इज नॉट अवर ब्यूटी। अगला वी से आप बताओ, वी से वैराग, और बी से विक्ट्री, ये मर्यादा है, विक्ट्री की मर्यादा। बी से वैल्यूज, वी से वैल्यूज, वी से वाइसलेस, वी से वैराग। सबसे अच्छा शब्द वैराग है, वी अर्थात वैरागी जीवन। हम भोग विलासिता का जीवन ना हो, ब्राह्मण जीवन अर्थात वैरागी जीवन हो। वैराग धीरे धीरे लोप हो रहा है ब्राह्मण समाज से, वैराग की कहीं चर्चा नहीं है। देखे तो तपस्वी नजर आए, वैरागी नजर आए, भोगी और डूबे हुए विलासिता में नजर ना आए। सुबह भी बात कही थी, महात्मा गांधी ने कहीं लिखा है, देयर इज अ लिमिट टू सेल्फ इंडल्जेंस बट देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ कंट्रोल। किसी को लड्डू बहुत पसंद है, जिलेबी बहुत पसंद है, कितनी जिलेबी खाएगा, 10 कि 100, लिमिट है उसको। पर कोई कहे कि मैं नहीं खाऊंगा, इसकी कोई लिमिट, 10 दिन नहीं खाएगा, 20 दिन नहीं खाएगा, पूरा जीवन भी नहीं खा सकता है व्यक्ति। देयर इज नो लिमिट टू सेल्फ कंट्रोल। कंट्रोल लिमिट तो उसको है, इंडल्जेंस को, भोग को, विलास को। तो वी के बाद में डब्लू फॉर डब्लू फॉर विजडम, ये मर्यादा, और डब्लू फॉर वाइज, डब्लू फॉर वेस्ट, डब्लू फॉर कोई अच्छा बताओ, चलो डब्लू में बाद में आते हैं। डब्लू के बाद एक्स, एक्स फॉर एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग, खुद की सेल्फ चेकिंग। ये मर्यादा है ब्राह्मण जीवन में, कम से कम 2 बार या कम से कम 1 बार रात में, कि आज मेरे से कोई पाप तो नहीं हुआ, आज मेरे से कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं, आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, आज मैंने कोई ऐसी चलन तो नहीं चली जो ब्राह्मण मर्यादाओं के एकदम विपरीत है। धर्मराज स्वयं का धर्मराज स्वयं बन के चेकिंग करनी है, एक्सरे। एक्स के बाद वाई अर्थात डब्लू नहीं, एक्स के बाद वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे अर्थात याद। एक नुमाशाम, एक अमृत वेला है और दूसरा है नुमाशाम का योग। नुमाशाम का योग कितने लोग करते हैं रोज, और बाकी नहीं होता है, ऑफिस ट्रैवल काम। जैसा अमृत वेला शक्तिशाली होता है वैसा नुमाशाम का योग भी शक्तिशाली हो। जो महत्व अमृत वेले का है वही नुमाशाम का भी है। योगा ट्वाइस अ डे, यदि ऑफिस में है ट्रैवल में उस समय भी जहां पर भी है 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30 अपने आप को थोड़े देर के लिए उस काम करते करते भी डिटैच कर देना है और कनेक्शन जोड़ देना ऊपर, जहां कहीं पर भी हम हैं एटलीस्ट वो टाइम कॉन्शियस हो जाना है कि ये योग का समय चालू है, विश्व की सारी ब्राह्मण आत्माएं योग में बैठी हुई है और मुझे भी बैठना है। काम कर रहे हैं परंतु करते करते योग युक्त तो हो जाना, यदि काम में है तो। यदि कुछ भी नहीं है सब तरफ से हटो और बैठो और योग करो। चलता फिरता योग तो दिन भर है परंतु ये बैठकर योग करना है। योगा ट्वाइस अ डे एटलीस्ट, डब्ल्यू वाई, वाई के बाद जेड, जेड अर्थात झील इन सर्विस। सर्विस का एक भी पॉइंट नहीं आया अभी तक 26 में से। यहां पर सेवा जो हमको दी जाती है या जो हम करते हैं, कैसे करें, उमंग उत्साह से करें, मौज से करें, खुशी खुशी से करें, नशे से करें, आज्ञाकारी बनकर करें ताकि देने वाला खुश हो जाए देखकर, ऐसी सेवा करें। स्वयं को इन धारणाओं पे मजबूत करना है। एक बचा है डब्लू, वो बताओ। वाह 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 वाह, ये मर्यादा है, ये कैसी मर्यादा है ये तो गीत है तुम्हारा डब्लू तो बताओ, वॉच, डब्ल्यू से मर्यादा, वेस्ट, वेस्ट क्या करना है कि नहीं करना है, डब्ल्यू से बोलते जाओ, डब्ल्यू से वाइस, डब्ल्यू से वेल बीइंग मर्यादा, डब्ल्यू से विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम व्हाट, सर्कमस्टांसेस, कछुए के जैसे, और विड्रॉ, डब्ल्यू से वेल विशिंग तो हमने कर दिया, गिव गुड विशेस में आ गया वेल विशेस, डब्ल्यू से वंडरफुल, ये कौन सी मर्यादा है, वॉच, डब्ल्यू से वाइज, डब्ल्यू से वीकनेस, वीकनेस का क्या, विटनेस, हाँ ये पॉइंट है, 24 घंटे में एक बार या दो बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करना है और साक्षी भाव धारण करना है। कल की अव्यक्त वाणी संडे की कंप्लीट साक्षी भाव पर है, बाबा ने कहा है तुम्हें साक्षी होकर देखना इस शरीर को और इस मन को, शरीर में ये भी नहीं कि मेरा शरीर है, मैं बीमार हूं, शरीर बीमार है, मैं अलग हूं, ये नहीं, अमानत उसकी है वो जाने, शरीर से भी साक्षी, बीमारी आ जाए ठीक है, मन से भी साक्षी, ये मन के भी साक्षी और शरीर के भी साक्षी, ऐसे संपूर्ण साक्षी दृष्टा। तो साक्षी दृष्टा ये मर्यादा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये हमको थोड़ा सा डिटैच करता है। 24 घंटे में एक बार ड्रामा की सारी पॉइंट्स याद करो, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा बोलते जाओ, बोलते जाओ, ड्रामा एक्यूरेट है, इस ड्रामा में सभी एक्टर्स निर्दोष नहीं है, संपूर्ण निर्दोष, खाली निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष, सारे झगड़े खत्म, ड्रामा एक्यूरेट, निर्दोष सभी, और कल्याणकारी है, कल की मुरली में एक्सीडेंट हो जाए उसमें भी कल्याण है, संडे की मुरली एक्सीडेंट हो जाए उसमें भी कल्याण छिपा हुआ है। एडिसन के जीवन में वर्णन है, उसकी पूरी लैब, रिसर्च लैब जल गई, वो खड़ा हुआ देख रहा है, उसका बेटा भाग के आ रहा है, उसके बेटे को कहता जाओ अपनी माँ को बुलाओ, ऐसा दृश्य तुम्हारी माँ कभी नहीं देखेगी, इतना अच्छा दृश्य है, पूरी लैब पूरा रिसर्च जल रहा है, और वो कहता है ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्नट अप टुडे, हमने जो भी गलतियां की थी सारी जल रही है, कितना अच्छी बात है। उसके बेटे ने 1952 के रीडर डाइजेस्ट में ये अनुभव लिखा है, एडिसन के बेटे ने, कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जाओ माँ को बुला के लाओ, एंड विद इन 6 मंथ्स ही रिक्रिएटेड रीरेक्टेड एवरीथिंग, 6 मास के अंदर फिर से सब कुछ खड़ा कर दिया जो जल गया था, रोते नहीं बैठा वहां पर। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा टिक टिक चलती रहती है, ड्रामा रिपीट हो रहा है, ड्रामा में नथिंग न्यू, ड्रामा वंडरफुल है, ड्रामा भगवान को पसंद है तो तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। तो साक्षी भाव होकर देखना है 24 घंटे में एक बार, शाम को करो, सुबह करो, रात को करो, और अपने आप को अलग कर देना, ये मैं नहीं हूं, ये कोई और प्लेयर प्ले कर रहा था पार्ट, आई एम डिफरेंट, अपने आप को ही देखना। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, खुद का नाम लेके अपने आप से बात करना। पला भाई, भाई लगा दो बोले, या बहन लगा दो, अरे बहन क्या कर रही हो, किसको बोल रहे हैं, खुद को, अरे भाई तू क्या कर रहा है, आया किस लिए था और कर क्या रहा है। तुलसीदास ने सारी रामायण दुनिया को नहीं सुनाई, अपने मन को सुनाई, अरे राम को छोड़ के कहां काम के पीछे जा रहा है, अरे मूर्ख मन सुन, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, अरे मूर्ख मन संसार का भजन बंद कर, गोविंद का भजन कर, अपने आप से बात करना है। साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, टेक योर नेम एंड टॉक विथ वंस योर सेल्फ, अपने आप से ही बातें करो, खुद का नाम लेके, जैसे मैं वो हूं नहीं, कुछ और ही हूं, कोई और ही हूं। तो ऐसी टोटल ये 26 धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं। एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद में एक हम थोड़ी सी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे और एक और क्लास होगा। ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर ब्रह्मचर्य, सी फॉर एटमॉस्फियर, डी फॉर ड्रेस कोड, ई फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी, बिजनेस, वर्ल्डली मैटर्स, वर्ल्डली अफेयर्स, यहां नहीं लेके आना है। ई एफ फॉर फूड, सात्विक हो, जो शक्ति भरे ऐसा हो। एफ एफ के बाद जी फॉर गिव हैप्पीनेस, ब्लेसिंग एंड गुड विशेस। एफ एफ जी एच एच होली कंपनी, एच आई फॉर इंट्रो इनकल्केशन ऑफ डिविनिटी, इनकल्केट अर्थात धारण करना, आत्मसात करना, हृदयंगम करना, इम्बिबिशन इम्बाइब करना, अपने अंदर लेना उसको, इम्बाइब अर्थात पीना होता है हिंदी इंग्लिश में, तो उसको धारण करना। और आई जे जे फॉर जर्नी टू मधुबन, मधुबन में जाके वहां पे दोष नहीं निकालते बैठना, उनके जो काम करने गए वही करना। जे जे के बाद के, के फॉर कीपिंग चार्ट, के एल एल फॉर लव फॉर ओनली वन बाबा, दूसरे हो गए तो उनको कैंसिल कर दो, ऐसे क्रॉस कर देना बड़ा सा, मन में क्रॉस बनाओ एक, आज से कैंसिल अभी वो। नेक्स्ट के एम मुरली क्लास, कहां सुनेंगे, सेंटर पर, घर पे बैठकर नहीं, इधर आना है। एम एन एन फॉर नो, अब ये नो की एक लिस्ट स्वयं को खुद बनानी है, कौन सी चीजें मेरे लिए नो है, हर एक दूसरा होमवर्क ले ले कि मेरे जीवन में मुझे नो किसके लिए करना है, नो विद कैपिटल एन। एन के बाद एन ओ, ओ फॉर ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल्स, ओ पी फॉर प्रिंटिंग लिटरेचर, ओ पी क्यू, क्यू फॉर क्वालिटी, आर फॉर रिलेशनशिप, एस फॉर साइलेंस सॉलिट्यूड, एस टी फॉर ट्रेवलिंग टू अदर सेंटर, टी एस टी यू, यू फॉर utilizing time and other resources, U V for Vairagya, V W witness, X X-ray, Y yoga twice a day, और Z अर्थात zeal and enthusiasm, zeal and zest, उमंग और उत्साह, किसमें, सेवा में। ऐसी ये 26 मर्यादाएं, इनको एक बार रिवाइज कर लेना रोज एक नजर डालकर। अच्छा, ओम शांति।